समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपकी अपनी न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। तो श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार वैष्णवी, नमस्कार, गुड डे एवरीबॉडी, वेलकम अलोंग लिसनर्स, दिस इज परिक्रमा ऑन 100.1 FM विद शगुन चोपड़ा एंड वैष्णवी। So we are all set and get ready listeners, for we have a lot of interesting stuff which we have lined up for you. A selection of news, our discussion segment Dateline India, reports, capsules and attributes. Well, stay with us for the next roughly 30 minutes. We are beginning first with the headlines.
गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल आईईईटी रोधी और आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय आईईडी डेटा प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की।
दिल्ली कोर्ट फ्रेम्स चार्जेस अगेंस्ट आरजेडी प्रेसिडेंट लालू प्रसाद यादव एंड हिज फैमिली मेंबर्स इन रेलवेज लैंड फॉर जॉब्स करप्शन केस।
विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान वैश्विक घटनाक्रमों के मद्देनजर भारत फ्रांस साझेदारी पर चर्चा के लिए फ्रांस की राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात की।
ईरान इम्पोजेज नेशन वाइड इंटरनेट ब्लैकआउट एज एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट एंटर 13th डे स्प्रेड अक्रॉस ऑल 31 प्रोविंसेस।
और पीवी सिंधु मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में पहुंची।
Listeners, this is our segment Dateline India, and we will talk about Viksit Bharat Young Leaders Dialogue. So the second edition of the Viksit Bharat Young Leaders Dialogue 2026 begins today in New Delhi and will go on till 12th of this month. It sets the vision, objectives and path forward, uniting youth voices, innovative ideas and leadership to contribute meaningfully to India's journey toward a Viksit Bharat by 2047. So, Youth Affairs and Sports Minister Mansukh Mandaviya has said that more than 2,500 youth from across the country and abroad will participate in this 4-day event. He also said that ISRO astronauts Group Captain Shubhanshu Shukla and Group Captain Prashant Nair will interact with the participants, while Indian women's cricket team Captain Harmanpreet Kaur will take part in a fireside interaction. He also added that the dialogue will also witness the participation of eminent domain experts including Pulela Gopi Chand, Leander Paes, Palki Sharma, Kai Walia Vohra and Sibhrata Das, along with Anand Kumar and Padma Awardees as well, and young MPs and MLAs.
इस आयोजन का उद्देश्य युवा नेताओं को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभिनव विचार और समाधान प्रस्तुत करने के लिए एक गतिशील राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है। ये आयोजन युवाओं, नीति निर्माताओं और राष्ट्रीय एवं वैश्विक नेताओं के बीच सार्थक संवाद को बढ़ावा देगा, जिससे युवा नेता राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में सक्रिय रूप से योगदान दे सकेंगे।
Right, Vaishnavi, and the dialogue officially began with the orientation session at Bharat Mandapam, New Delhi. This session is being held in the esteemed presence of Minister of State for Youth Affairs and Sports, Raksha Khadse. The minister said,
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कहना है, विकसित भारत का निर्माण सरकार अकेले नहीं कर सकता, बल्कि युवाओं की भागीदारी से ही देश को अगले 25 साल युवाओं के विचार, ऊर्जा और नेतृत्व के साथ जोड़ना है। और मुझे आज खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन से माय भारत की शुरुआत हुई। माय भारत पोर्टल के माध्यम से लगभग पूरे देश में 2 करोड़ से भी ज्यादा युवा का रजिस्ट्रेशन वहाँ पे हुआ है। और इस माय भारत पोर्टल का एक मकसद है कि देश के सभी युवाओं को हम एक साथ जोड़े, सभी राज्यों के युवाओं को एक साथ जोड़े, उन्हें अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से हमें इस विकसित भारत के मिशन में उनको आगे बढ़ाए।
द मिनिस्टर ऑल्सो हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डायलॉग।
विकसित भारत यंग लीडर्स का मकसद ही यही है कि यहाँ पे युवा एक साथ आए, अपने संस्कृति को, अपने विचारों को यहाँ पे प्रकट करें, एक साथ आगे बढ़े। क्योंकि हमारा जो मकसद है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से हम हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं।
श्रोताओं, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का मुख्य आधार विकसित भारत चैलेंज ट्रैक है और इसे अलग अलग चरणों की एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। पहले चरण में डिजिटल क्विज का आयोजन माई भारत और माई गॉव प्लेटफॉर्म पर किया गया, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 50.42 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया। इसके बाद निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 10 राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले विषयों पर 2 लाख से अधिक प्रविष्टियां प्राप्त हुई। वहीं तीसरे चरण में राज्य स्तरीय विजन डेक चैलेंज में नेतृत्व क्षमता, दूरदृष्टि की स्पष्टता और संयोगात्मक कौशल के आधार पर प्रतिभागियों को और अधिक चयनित किया गया।
ऑल्सो द चैलेंज ट्रैक, लेट्स टेल यू अबाउट दैट। This will culminate in the national championship during Viksit Bharat Young Leaders Dialogue, where 1,500 shortlisted youth leaders will present their young leaders will present their ideas at the grand finale to be held in New Delhi from 9th to 12th January 2026. And here, participants will engage in thematic presentations and competitions focusing on 10 identified themes. Number 1, Youth in Democracy and Government for Viksit Bharat. Number 2, Women-led Development, the Key to Viksit Bharat. Number 3, Fit Bharat, Hit Bharat. Number 4, Making India the Startup Capital of the World. Number 5, Bharat Soft Power, कल्चरल डिप्लोमेसी एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस।
शगुन, यहाँ पे मैं कुछ अन्य विषय के बारे में भी बताना चाहूंगी, जिसमें से पहला है परंपरा के साथ नवाचार, आधुनिक भारत का निर्माण। दूसरा, आत्मनिर्भर भारत, भारत में बनाओ, दुनिया के लिए बनाओ। तीसरा, स्मार्ट और टिकाऊ कृषि के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाना। वहीं चौथा है टिकाऊ और हरित विकसित भारत का निर्माण। और पांचवा, विकसित भारत के लिए तैयार कार्यबल का निर्माण।
Also, complementing is the cultural and design track, spanning district, state and national levels, featuring competitions in story writing, painting, folk music, dance, poetry, also innovation. The best teams from each state and union territory will compete at the national level, Vaishnavi, and this second edition of the dialogue introduces key new verticals while retaining the core vision of the first one. And these include Design for Bharat, a national design challenge addressing social, cultural and economic challenges. Other one, it is Tech for Viksit Bharat, Hack for a Social Cause, a multi-stage hackathon promoting technology-driven solutions and international participation with youth delegates from the Know India program and BIMSTEC nations coming together at Bharat Mandapam.
जी बिल्कुल। और यही इस वर्ष के आयोजन के समापन समारोह में लगभग 3,000 प्रतिभागी एक साथ आएंगे, जिनमें 1,500 युवा विकसित भारत चैलेंज ट्रैक से होंगे, सांस्कृतिक एवं डिजाइन ट्रैक से 1,000 युवा और 100 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि, तो वहीं 400 विशेष अतिथि शामिल होंगे। उनके प्रस्तुतियों और सांस्कृतिक आदान प्रदान से विचारों और प्रतिबद्धताओं का एक जीवंत राष्ट्रीय पारिस्थितिकी तंत्र बनेगा, जो विकसित भारत 2047 के निर्माण में युवाओं को प्रमुख भागीदार के रूप में सशक्त बनाएगा। शगुन, अब श्रोताओं को बताते हैं कि आखिर पहले दिन क्या प्रमुख गतिविधियां रहेंगी।
राइट, The Viksit Bharat Young Leaders Dialogue 2026 set the tone and direction for ensuing 3 days of engagement, deliberations and collaboration. Let us tell our listeners about the day too as well.
Ji, bilkul.
Right. So this will commence on 10th January, which is tomorrow. It will commence with a plenary session to be graced by Dr. Mansukh Mandaviya, Union Minister of Youth Affairs and Sports, also Labour and Employment, and Ajit Doval, National Security Advisor, along with senior officials of the Ministry of Youth Affairs and Sports. They will also grace the occasion. Following the inaugural session, participants will take part in theme-based deliberations across the 10 national priority themes under the guidance of eminent domain experts and public leaders. So these deliberations, they aim to foster solution-oriented discussions, practical insights and actionable recommendations aligned with the vision of Viksit Bharat at 2047. So running concurrently, the Viksit Bharat exhibition, it will showcase initiatives from central ministries, and this will highlight opportunities in education, in skilling, entrepreneurship, innovation and culture. Also, Vaishnavi, participants will visit the Prime Minister's Museum and Library for a guided tour in the afternoon, and they will gain insights into India's leadership and democratic journey. How great, how wonderful.
जी, और यहीं अगर मैं तीसरे दिन की बात करूं तो आयोजन के तीसरे दिन इसरो के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला माई भारत के स्वयं सेवकों के साथ बातचीत में शामिल होंगे, जिसमें वे विज्ञान, नवाचार और राष्ट्रीय सेवा के क्षेत्र में अपने अनुभवों से युवाओं को प्रेरित करेंगे और एक विकसित भारत के निर्माण में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका पर प्रकाश डालेंगे। इस दिन का समापन कलर्स ऑफ विकसित भारत नामक सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ होगा। प्रख्यात क्रिकेटर और भारतीय राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी।
एंड ऑन 12th of January, दिस इज द फाइनल डे वैष्णवी, एंड विच इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल यूथ डे टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद, इट विल मार्क द डिफाइनिंग कल्मिनेशन ऑफ द डायलॉग। द डे will witness the participation of Prime Minister Narendra Modi, underscoring the national significance of this platform and the government's commitment to youth-led nation building. The Prime Minister here will interact with the young participants, giving them the opportunity to present their ideas for nation building directly to the top leadership of the nation. How great and innovative. And I think they will when they will be present there on 12th of January, this is a conversation to look forward to, right?
Mm-hmm.
They will present their ideas. How great. Mm-hmm. The program will also feature a grand plenary session led by the Prime Minister. This includes a town hall style interaction with young leaders.
जी, इस प्रमुख पहल से युवाओं को प्रेरित और उत्साहित करने के लिए की उम्मीद है, जिससे वे विकसित भारत 2047 के परिवर्तनकारी सफर में सक्रिय रूप से योगदान दे सकें। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष युवा नेता 10 प्रभावशाली प्रस्तुतियां देंगे। विकसित भारत युवा नेता संवाद 2026 भारत के विकास सफर में युवाओं को केंद्रीय हितधारक के रूप में सशक्त बनाता है।
We are moving on. Keshopur, Miani Community Reserve in Punjab's Gurdaspur. It is a home for migratory birds coming to stay here during winters from about 35 countries by covering thousands of miles. This place is a Ramsar wetland site and this is famous for the migratory birds across India.
पंजाब का सीमावर्ती जिला गुरदासपुर जहां अपने ऐतिहासिक पहचान के लिए जाना जाता है, वहीं इसे केशवपुर और शाला पत्तन वेटलैंड्स के लिए भी ख्याति प्राप्त है। यहां स्थित केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, जो एक रामसर वेटलैंड है, इस समय माइग्रेटरी बर्ड्स की चहचहाट से खिलखिला रहा है। सर्दियों में उत्तरी, पूर्वी, मध्य यूरोप, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, रशिया, साइबेरिया और नॉर्दर्न एंड सेंट्रल एशिया से यहां पंछी नवंबर में आने शुरू हो जाते हैं। केशवपुर वेटलैंड के इंचार्ज मनवीर सिंह ने बताया कि इस समय अलग अलग स्पीसीज के तकरीबन 9000 पक्षी ऑलरेडी यहां पहुंच चुके हैं, जिनमें ग्रे लेग गूस, ब्लैक कूट, ग्लॉसी इबिस, कॉर्मोरेंट इत्यादि शामिल हैं। 1000 स्पीसीज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स कम हेयर फ्रॉम 33 to 35 कंट्रीज एंड रिमेन टिल मार्च एंड गो बैक ड्यूरिंग समर्स। पंजाब में यही एक ऐसा वेटलैंड है जहां सारस क्रेन की हैबिटेट है और उन्होंने यहां ब्रीडिंग भी की है। जो बर्ड लवर्स हैं, वो सुबह जल्दी आकर वॉच टावर्स पर बैठ उनकी फोटोग्राफी और स्टडी करते हैं। इन्हीं महीनों में टूरिस्ट का भी इन्हें देखने आना शुरू हो जाता है। मनवीर सिंह ने बताया कि इस महीने के आखिर तक 15,000 से 20,000 के करीब पक्षी यहां पहुंच जाएंगे और सारे वातावरण को अपनी चहचहाट से और भी संगीतमय करेंगे। गुरदासपुर से बिशंबर बिट्टू के साथ परिक्रमा के लिए जलंधर से मैं राजेश बाली।
और श्रोताओं, पंजाब से अब आप रुख करते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की ओर।
जी,
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दौरा किया था। दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री ने द्वीप समूह के विकास के लिए 373 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दौरे के अवसर पर 373 करोड़ रुपए की लागत वाली 9 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 2 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें 229 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन भी शामिल है। यह सुरक्षा उद्देश्यों के लिए एक व्यापक एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र होगा, जो भारत के किसी भी विकसित शहर में मौजूद केंद्रों के समकक्ष होगा। इसके अलावा 33 करोड़ की लागत से 11 चरमा जिला अस्पताल चरण 1 का लोकार्पण, फॉरेंसिक साइंस लैब का लोकार्पण और 50 करोड़ रुपए की लागत से 6 अन्य योजनाओं का लोकार्पण किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि इन विकास परियोजनाओं के माध्यम से द्वीप समूह के विकास के एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। उन्होंने कहा कि द्वीप समूह में ब्लू इकोनॉमी और पर्यटन के लिए अपार संभावनाएं हैं। गृह मंत्री ने कहा कि पर्यटन हो या पर्यावरण, मत्स्य संपदा हो या कृषि, MSME हो या स्वच्छ ऊर्जा, हर क्षेत्र में विकास की शुरुआत यहाँ हुई है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने कहा कि इससे ग्रेट निकोबार विश्व के नक्शे पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थान और सामरिक सुरक्षा का केंद्र बनाएगा। अपने दौरे के दौरान श्री शाह ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कार्यकर्ताओं से भेंट की। श्री शाह ने भाजपा अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी सहित अन्य प्रमुख पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी की। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से मैं तरन्नुम मोहम्मद।
लेट्स हेड टू केरला। द केरला लेजिस्लेटिव असेंबली हैज टेकन ऑन अ डिस्टिंक्टली डिफरेंट रिदम दिस वीक एज बुक्स, ideas and cultural expressions flow through its corridors with the fourth edition of the Kerala Legislative Assembly International Book Festival currently underway and will continue till January 13th. More details on this from our correspondent.
The Kerala Legislative Assembly Book Festival has drawn a steady stream of readers, writers, students and curious visitors into the assembly complex and turning the seat of lawmaking into a lively cultural venue. The sight of families browsing bookstores and students lingering over discussions reflects a continuing public enthusiasm for reading, even in the age that is dominated by digital distractions. Conceived as an initiative to encourage reading as a positive and creative addiction, the festival is visibly fulfilling its purpose. Young readers in particular have been a prominent presence, engaged with books and conversations that offer a refreshing alternative to the constant pull of screens. Spanning over 7 days and continuing till January 13, the book festival is hosting a rich mix of discussions, talks and cultural programs. One of the major attractions this year is the staging of Northern Kerala's vibrant ritual art Theyyam within the assembly premises. Powerful ritual performances such as Pottan Theyyam, Agni Kandakaran Theyyam, Kuttichathan Thira and Pookuttichathan are being presented by the Mahi Theyyam Paitrika Samiti. It is bringing a deeply rooted folk tradition into an urban institutional phase. More than 175 publishers are participating in the book festival with more than 300 stalls. Festival's theme, Knowledge Flow for Progress, adds another layer of meaning to the event. Me BM Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
और श्रोताओं, अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारत की पीवी सिंधु आज कुआलालंपुर में मलेशिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। विश्व के तीसरे नंबर की खिलाड़ी जापान की अकाने यामागुची के खेल से हटने से पहले सिंधु ने पहला सेट 21-11 से जीता था। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु का मुकाबला इंडोनेशिया की छठी वरीयता प्राप्त पुत्री कुसुमा वरदानी या चीन की दूसरी वरीयता प्राप्त वांग झी यी से होगा।
नाउ इन सम बिजनेस न्यूज। Benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty, ended over 0.7% down today, extending their losing streak to a fifth straight session. The Sensex shed 605 points to close at 83,576, while the Nifty dropped 194 points to settle at 25,683. And for more updates about the market activities, tune in to Akashwani's bilingual program, Market Mantra, at 6:30 p.m. this evening.
अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे कुछ महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन.
On the 9th of January 1915, Mahatma Gandhi returned to India after his successful satyagraha in South Africa. Upon his return, he was honored by the people of Bombay at a magnificent reception in the palatial house of a Bombay businessman, Jahangir Pettit. Despite leading an extra-constitutional movement in South Africa and defying laws, Gandhi received a warm welcome, even from the British Indian government, as the cause for which he had fought appeared as much humanitarian as political. The British Indian government joined hands with the people of India in showering honours on Gandhi, and he was accorded with Kesari Hind Gold Medal in the King's Birthday Honours List of 1915.
Gandhi took his time to plunge into Indian independence movement. Under the guidance of his Indian political mentor, Gopal Krishna Gokhale, Gandhi underwent a year of probation to understand the Indian situation and did not express himself upon public questions for a year. During the year of probation, Gandhi confined himself to the reform of the individual and the society. His restraint was partly due to self-imposed silence and partly to the fact that he was still studying conditions in India. After the year was over, Gandhi devoted himself to the cause of Indian independence completely.
Since 2003, 9th of January has been commemorated as Pravasi Bharatiya Divas by the Government of India to mark the contribution of the overseas Indian community towards the development of India.
We also remember Deen Bandhu of farmers, Sir Chotu Ram, who died on the 9th of January 1945. He sought to articulate the suffering of the peasantry during the British India period.
Chotu Ram came from a debt-ridden family from the area which is now in the state of Haryana. His area used to witness frequent droughts and famines, leading to dependence of farmers on moneylenders. Under the patronage of Sir Chajju Ram, Chotu Ram completed his law degree from Agra. He joined the Congress in 1916 and was the president of the Rohtak District Congress Committee from 1916 to 1920.
In 1923, he formed the Unionist Party in alliance with Fazle Hussain and Sir Sikandar Hayat Khan. The party won the general elections of 1936 in Punjab and formed a coalition government along with the Congress and Akali Dal with Chotu Ram as a revenue minister.
As a minister of the pre-partition Punjab Legislative Council, his first major achievement was the passage of the Punjab Land Revenue Amendment Act 1929, which remains a landmark social legislation till date. The exploitation of the peasantry by moneylenders was brought to an end with a series of measures, starting with the Punjab Regulation of Accounts Act 1930.
The Punjab Agricultural Produce Markets Act was passed in 1939, which provided for the constitution of market committees in notified areas and helped free the farmer from exploitation. A consolidation of land holdings was undertaken after passing the Consolidations Holding Act 1936, amended in 1945. Not only were all these laws passed, Chotu Ram also ensured their implementation.
For his outstanding contribution to upliftment of peasantry, farmers rewarded him with the titles of Deen Bandhu and Rehbar-e-Azam. The British honored him with a knighthood in 1937.
भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में जब गहराई, साधना और भाव की बात होती है तो उस्ताद राशिद खान का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है. आज उस्ताद राशिद खान की पुण्यतिथि है. वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान गायक और संगीतकार थे. उस्ताद राशिद खान रामपुर सहसवान घराने से ताल्लुक रखते थे और अब आपको सुनाते हैं उस्ताद राशिद खान की ये खूबसूरत सी प्रस्तुति.
जब तुम साजना आओगे, जब तुम साजना अंगना गिनेंगे परिचय का सावन
Well, his unique style incorporated slow elaboration, showcasing a profound understanding of the intricacy and nuances of raag. Well, listeners, we are also remembering Om Prakash Bhandari, Kamar Jalalabadi. Well, he started writing poetry at an early age, though there was no legacy of music or poetry in his family. So he was the first person, maybe.
जी बिल्कुल. और श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं कि ऐसा लोकप्रिय गीत जिसे आपने कई बार सुना तो जरूर होगा, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं होगा कि इसके बोल कमर जलालाबादी की कलम से निकले हैं. अब हम बात करेंगे एक ऐसे प्रसिद्ध पार्श्व गायक की जिन्होंने हिंदी सिनेमा को देशभक्ति और जोश से भर दिया था. ये सुनते ही जरूर आपके मन में महेंद्र कपूर का नाम आया होगा. जी हाँ, आज उन्हीं का जन्मदिन है. महेंद्र कपूर की आवाज में एक अलग ही ताकत और गंभीरता थी. आइए उनकी याद में सुनते हैं ये गीत.
मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ. है प्रीत जहाँ की रीत सदा.
Listeners, today we'll also tell you about Professor Hargobind Khurana. Nobel Prize winning biochemist and chemical biologist made important contributions to the chemical synthesis of genetic materials. And, well, the Nobel that he was awarded was in physiology or medicine, along with Professor Marshall Nirenberg and also Professor Robert Holley in 1968 for their interpretation of the genetic code and its function in protein synthesis. And he was also bestowed with Padma Vibhushan in 1969.
आज हिंदी साहित्य में इतिहास को जीवंत रूप देने वाले लेखक वृंदावन लाल वर्मा का जन्मदिन है. वे एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकार और निबंधकार थे. उनके लेखन में भारतीय इतिहास, संस्कृति और वीरता की झलक साफ दिखाई देती है. उनकी सबसे चर्चित रचना झांसी की रानी है.
टुडे इट्स ड्रीमी पेजेस बर्थडे. जेम्स पैट्रिक पेज, द म्यूजिशियन एंड प्रोड्यूसर, achieved international success as the guitarist and founder of the rock band Led Zeppelin. The song which I will be playing for you, it is Wasting My Time. Listeners, today it's also Farhan Akhtar's birthday. Vaishnavi.
जी, फरहान अख्तर ने निर्देशन से अपने करियर की शुरुआत की थी और कई यादगार फिल्में दी. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, फरहान अख्तर की आवाज में सुनिए उनकी कलम से निकली ये कुछ पंक्तियाँ.
जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पलकों तक आया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है. ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं. थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा, आग तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है. क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है.
Well, it goes without saying that his voice, it is unique, I mean, right?
जी बिल्कुल. फरहान अख्तर अपने गीतों और आवाज के लिए भी पसंद किए जाते हैं.
हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम.
क्यूरियोसिटी शुड बी देयर.
जी बिल्कुल. और अब हम बात करेंगे सुंदरलाल बहुगुणा की, जो कि जिनका आज जन्मदिन है। सुंदरलाल बहुगुणा का मानना था कि प्रकृति की रक्षा करना मानव जीवन के लिए जरूरी है। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए वैष्णवी और शगुन को कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने का। नमस्कार, नमस्कार।